તારીખ 23/3/1994 પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા આગ્રામાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 17 મૂળ કેસેટમાં હમિંગ છે તથા અવાજ ફાટે છે.
નિર્ધાર કરતા હૈ તો અનુપાત મેં જો પ્રયાસ હૈના ધ્યેય હાસલ કરવા ચાલુ હોતા હૈ. इसको विशेष रूप से खोल सकते हैं अपन कि मोक्ष क्या है, नव तत्व क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, विकार क्या है, विकार क्या है, स्वभाव विभाव क्या है, सब जानते हुए मनुष्यों को अपना आत्मकल्याण के लिए जो बल आना चाहिए, जिससे उसको अनुभूति तक पहुंच सके, ऐसा बल आना चाहिए, क्यों नहीं आता है? यही कारण है कि उसने शुरुआत ठीक ढंग से नहीं की है. यही कारण है इसका. बहुत प्रैक्टिकल बात वो है कि जिसको जितना चाहिए उसके अनुपात में ही पुरुषार्थ वो करेगा. संसार में भी जिसको शाम को 50 रुपये का खर्च है वो उतनी मेहनत करता है, और जिसको शाम को 10,000 की जरूरत है वो उतनी मेहनत करेगा, उतना पुरुषार्थ करेगा. तो हम आपको ये पूछ सकते हैं कि आपको पूरा सुख चाहिए या अधूरा चाहिए? आपको हमेशा के लिए सुख चाहिए, हमेशा हमेशा सुखी रहना चाहते हो, या कुछ दिनों तक बिना सोचे आप कहेंगे तो पूरा सुख पूरे काल के लिए ही चाहिए? तो इसके लिए पवित्रता चाहिए, पूर्ण शुद्धि चाहिए, और इसी का दूसरा नाम मोक्ष है. पूर्ण शुद्धि और पूर्ण पवित्रता उसका ही, और पूर्ण सुख इसका ही दूसरा नाम मोक्ष है. वास्तव में वो चाहिए तो उसी के अनुपात में ही हमारा पुरुषार्थ चालू हो सकता है. अगर उतना व्यवस्थित रूप से हमने प्रवेश नहीं किया इस मार्ग में, इस लाइन में, तो हमारी जो स्थिति है जो वर्तमान में, कि हम सब कुछ जानते हुए भी हमारा पुरुषार्थ चलता नहीं, हमारा पुरुषार्थ उठता नहीं, और जो भी वर्तमान परिणमन है वो साधन है, लेकिन बिना साध्य साधन किसका ये हमारा है. अगर आपने साध्य निश्चित नहीं किया तो मोक्ष का निश्चय कराने के लिए तो मैं अधिकार चलाया है कि मोक्ष का निश्चय कैसे करता है. बहुत पहलू लिया है पंडित जी ने, और हर पहलू को बहुत विस्तार से उसकी चर्चा की है. लेकिन ऐसा निश्चय होता है तो निश्चय के अनुसार ही कार्य का उठाव आता है. दूसरा दृष्टांत ये कि हमको शाम तक 20 किलोमीटर चल के पहुंचना है, तो हमको पता है कि अगर शाम के पहले नहीं पहुंचेंगे तो रास्ते में हम खत्म हो जाएंगे, रास्ता अच्छा नहीं है, रात को या तो डूब जाते हैं या तो प्राणी खा जाते हैं जंगल के. तो उतने हमारे जो कदम है उस तेजी से उठाने के लिए हमें विकल्प नहीं करना पड़ता है. क्यों? हमें मालूम है कि बहुत लंबा रास्ता हमको शाम तक पूरा करना है. वैसे जिसको पूर्णता का लक्ष्य होता है उसको अपनी वर्तमान स्थिति का भान होता है कि मुझे बहुत लंबा रास्ता काटना है, बहुत बाकी है, मुझे बहुत करना बाकी है, बहुत करना बाकी है. तो उसके परिणाम में जो तेजी आनी चाहिए वो तेजी आ जाती है. तो तो आत्मा की प्राप्ति मैंने अनुभव, प्रश्न वो है कि आत्मा की प्राप्ति मोक्ष के रूप से कैसे होती है। प्राप्ति मैंने अनुभव, तो मोक्ष तो पूर्ण अनुभूति है, जिसको पूर्ण अनुभूति के लिए उत्साह आया, विजयवास हुआ, उसको क्या आत्म प्राप्ति मैंने शुरुआत के अनुभव अनुभूति नहीं हो सकती क्या? तो आत्म प्राप्ति की भावना इतनी तीव्र जोर से आती है, इतनी तीव्र जोर से आती है कि उसको हर कार्य में मेरा आत्म कल्याण कैसे हो उन्हीं दृष्टिकोण से वो हर कार्य को देखेगा, उसी लक्ष्य से वो देखेगा और वैसे ही अपनी सब व्यवस्था बिठाएगा कि जहां हमारे ध्येय को विरुद्ध हम नहीं चले, ऐसी व्यवस्था सही परिणाम की होगी और ऐसी व्यवस्था अपने उदय के विषय में उसके परिणामों की चलेगी। तो एक दफे तो इस ध्येय को निश्चित कर लें तो ये सब बातें स्वतः समझ में आ जाती है। दूसरा प्रश्न
इन्हीं का अरुण कुमार जी का ही दूसरा प्रश्न है। आज आपने प्रातः के प्रवचन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को साधन कहा और मोक्ष को साध्य कहा था, यह साध्य साधन संबंध किस प्रकार का है?
ठीक है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ये मोक्ष का मार्ग है, ये तो सूत्र जी का पहला सूत्र है। मार्ग कहो, उपाय कहो, इलाज कहो, साधन कहो, क्या अंतर पड़ता है? इसका फल क्या है? तो मोक्ष है, तो मोक्ष साध्य है और उसको उसका साधन मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है, एक मार्ग है, एक मार्ग फल है, एक साधक है, एक साध्य है। उसमें कोई और तर्क हो तो हम समझ सकते हैं अरुण कुमार जी कि जो भी आपका क्या तर्क है, उसमें साधन नहीं होने के बारे में आपको कौन सी शंका है, किस प्रकार की शंका है? तो बहुत सीधी सारी बात है।
भाई अरुण कुमार जी से लेने को मैं दोनों प्रश्नों के बारे में यदि वो इसी समय कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं या बाद में कोई प्रश्न चर्चा करें तो बाद में कर सकते हैं।
ठीक है,
अब अगला प्रश्न है,
अपना प्रश्न का कोई उत्तर में कोई और टेटा प्रश्न उठता है तो उठा सकते हैं, उसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्नकार या दूसरा कोई भी उठा सकते हैं, इसमें वो बात हमें रह जाती है समझ में, तो उसकी चर्चा भी हम कर लेंगे।
अगला प्रश्न है, धर्म क्या है, क्या इसकी कोई परिभाषा, व्याख्या या अभिव्यक्ति है? यह प्रश्न अपने श्री जीवन सिंह जी मेहता का है, अपने पंडित जी साहब के जो पुत्र भी हैं, तो एक दूसरे में सेवा जो अगर चर्चा करना भी चाहे तो कर सकते हैं।
धर्म का परिभाषा हमारे परमागम में प्रसिद्ध है, वक्तु सहायो धम्मो। क्या परिभाषा है? वस्तु का समारोह वो धर्म है और जो वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु का जो स्वभाव है वो शक्ति रूप है, सामर्थ्य रूप है स्वभाव, उसी स्वभाव के अभिनियुक्ति अपने शुद्ध परिणमन में होती है, तो उसी को भी धर्म कहने में आता है। जैसे आत्मा को आत्म शांति मिले वही आत्मा का धर्म है, क्योंकि वो भी एक उनका स्वभाव है, प्रॉपर्टी है। ऐसे आत्मा में अनंत ज्ञान भरा हो इसका सवाल है। शुद्ध ज्ञान प्रकट हो गए वो भी धर्म है। आत्मा में चारित्र शक्ति है, शुद्ध चारित्र प्रकट हो गए वो भी धर्म है। तो ऐसे धर्म की तो अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन मूल जो सूत्र है वो अभावी है। कोई भी तर्क कुतर्क से उसमें कोई बाधा कर सकते नहीं है, इसलिए मूल सूत्र वो है। फिर इसके जो स्वभाव की अनेक प्रकार की जो दशाएं हैं, क्योंकि क्योंकि उसमें अनंत गुण है, स्वभाव है वो अनंत गुणात्मक है, और किसी भी एक गुण की अभिव्यक्ति से धर्म की परिभाषा शास्त्र में आती है। अनेक प्रकार से वो शास्त्र में धर्म की परिभाषा होने पर भी उसका सामान्य रूप वो है कि वो स्वभाव प्रकट हुआ है, फिर किसी गुण के माध्यम से उसको बताया जाता है या बोला जाता है।
अगले प्रश्न है, एक पंक्ति में दो प्रश्न है। पहला है,
आपका कहना यह सही है कि धर्म एक परिणमन रूप है, प्रयोग रूप है, लेकिन सर्वथा परिभाषा से रहित हो तो उसको कोई बता ही नहीं सकते थे, न कोई कह सकते थे, न कोई सुन सकते भी थे। तो जो अधर्मी है उसको धर्म की प्राप्ति तो बताए बिना, कहे बिना, समझे बिना तो आई ही नहीं। इसलिए सर्वथा वो अवाच्य है ऐसा भी नहीं है, कथनचित वाच्य भी है और कथनचित अवाच्य भी है। ये कह सकते हैं हम कि बहुभाग अवाच्य है, संकेत मात्र वाच्य है, ऐसा कह सकते हैं। क्यों? कि धर्म में अनंत गुण का परिणमन है, जबकि उसकी परिभाषा में कुछ एक गुण का परिणमन की बात आती है। जैसे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राणी क्या है, कि धर्म है, मोक्ष मार्ग है वो धर्म है, तो उतना तो कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक चारित्र धर्म है, चरित्र कल धर्म वो ये भी सूत्र है कुंदाचार्य का। तो सर्वथा वचन अगोचर है ऐसा भी नहीं है, और सर्वथा वचन गोचर है ऐसा भी नहीं है। इस तरह से उसको जैसा है वैसा समझना चाहिए।
मेरी पूरी क्षमता जी कि अगर हम उसको परिभाषा में जानते हैं पंडी बनती है, और उनकी कोई पंडी नहीं हो सकती, क्योंकि पंडी है वो पहली वस्तु है और भाव है वो अंदर की वस्तु है, इसलिए उसको परिभाषा के संकेत क्षेत्र में कैसे बांध सकते।
तो क्या है, कथनचित कहने से वो परिगिरी से मुक्त हो जाता है, जबकि ये कथनचित अभिव्यक्त होता है तो उसमें परिधि नहीं रही। ठीक है, आपकी शंका का समाधान होता है। अथंचित कहने से हमारी मर्यादा हमने पूरी मान नहीं की, बहुत बाकी है कि हम साथ ही कहते हैं तो ऊपरी हमें नहीं आता है। ठीक,
का भेद ज्ञात होना सुविकल्प है। ज्ञान में भेदों का भेद ज्ञात होना सुविकल्प है। विकल्प है या नहीं क्या है इसके बारे में कुछ थोड़ा सा चार से होंगे
पूरा करते हैं।
दूसरा और शायद इससे रिलेटेड हो ना बोल दूसरा है श्रेणी में अभूतपूर्वक व्यक्ति परिवर्तन होता है। श्रेणी में अभूतपूर्वक व्यक्ति परिवर्तन होता है तो क्या वो उपयोग होते हैं ऐसे
गेयों ज्ञान में गेयों का भेद ज्ञान होना सो विकल्प है ऐसा शास्त्र वचन भी है। विकल्प शब्द का अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न प्रकरण में भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। एक तो स्थूल रूप से हम जो विचार करते हैं उसको भी विकल्प कहते हैं, तो उसमें राग और ज्ञान की मिश्र पर्याय है हमारे विचार में, उसको हम विकल्प भी कहते हैं, विकल्प की संज्ञा भी उसको कहते हैं। और गेयों में अनेक प्रकार के ज्ञान में गेयों का अनेक प्रकार का जो भेद होता है उसको भी विकल्प कहने में आता है। कह सकते हैं, कहने में आपत्ति नहीं है, फिर भी हमारा जो वो विकल्प विचार रूप विकल्प और ये विकल्प एक नहीं है, दो अलग अलग बात है।
जो दूसरा विकल्प आपने फरमाया तो वो क्या केवल ज्ञान में ही होता है?
उस ज्ञान को विकल्पात्मक ही कहने में आता है। जो भेदपरक ज्ञान है उसको विकल्पात्मक ज्ञान कहा है, ऐसा कहने का एक पद्धति है कि भेदपरक जितना ज्ञान है तो उसको विकल्पात्मक ज्ञान कहने में आता है, उसको साकार ज्ञान भी कहने में आता है, ऐसे कहने की पद्धति है शास्त्र में। लेकिन जो है सो वस्तु का स्वरूप तो जो है सो समझना है, क्योंकि विकल्प के अर्थगठन अलग अलग भी है।
इस अपेक्षा से उसके लिए हम छह विकल्प कहेंगे
ना सर, विकल्प ज्ञान की
अपेक्षा से
पंचाध्याय में कहा पंचाध्याय में ऐसे ज्ञान को स्वविकल्प कहा है, इसलिए वो शास्त्र वचन है। तो उसका अथवा वो विकल्प नहीं लेना है, विकल्प तो बहुत अर्थ किए हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न है श्रेणी में अबुद्धिपूर्वक व्यक्ति परिवर्तन होता है तो व्यक्ति परिवर्तन का वहां अर्थ वो है कि एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय में ज्ञान का परिवर्तन होना, जबकि विषय अबुद्धिपूर्वक का है तो हम उसको बुद्धिपूर्वक कैसे ज्ञान में लेंगे ये बताइए आप, जबकि ये केवल ज्ञान का विषय है तो उसकी कल्पना में कोई करनी है क्या?
सिद्धांत पूछना चाहते हैं ना, सिद्धांत में उपयोग दो प्रकार का हो गया, उस समय एक घर को जान रहा है और एक ऐसा जो पढ़ने भी जानने में लग रहा है, एक ही साथ दो काम प्रेमी की अवस्था में संभव है क्या, ये दो प्रकार का प्रश्न लगता है।
ऐसा है कि ज्ञान में स्वतः प्रकाशकपना होता है तो दो उपयोग हो जाता है क्या? अब मेरा प्रश्न है, जब आप इसी तरह सोचते हो तो स्वतः प्रकाशकपना में क्या दो उपयोग हो जाता है क्या?
सदस्य
का उपयोग स्वतः प्रकाशक नहीं है क्या?
अपेक्षा से है कि वो सैकड़ों जाने कभी परसों जाने,
क्रम से जानता है क्या एक साथ जानता है
दोनों लोग आपको आती है कृपया खिला कर दीजिए दोनों ही आती है साथ ही
तो ऐसे स्थूल रूप से ज्ञान को नहीं समझना चाहिए। ज्ञान एक ऐसा पर्याय है जिसमें बहुत सूक्ष्मताएं भरी है, इतनी सूक्ष्मताएं भरी है कि इसकी चरम सीमा की परिभाषा आई कि श्रेणी में व्यक्ति परिवर्तन भी होता है जबकि श्रेणी में सुखों के लिए होता है ना, फिर भी व्यक्ति परिवर्तन है मानना तो पड़ेगा। प्रथम वितर्क विचार सब आता है तो ये बहुत सूक्ष्म परिणमन है। तो शास्त्र कथन में कहीं स्थूल कथन से विवक्षा होती है कभी सूक्ष्म कथन से विवक्षा भी होती है। जैसे कि हम कहेंगे कि हमारे जीव में सभी प्रकार के पांच परावर्तन में सभी भव कर लिए हैं, कोई भव हमने नहीं छोड़ा है, लेकिन ये स्थूल कथन है। सम्यक दृष्टि को दो दो भव मिलता है वो भव नहीं मिला है किसी को, सूक्ष्म कथन वो है इसका। कभी वो सौधर्म इंद्र नहीं हुआ है, कभी वो लोकांतिक देव नहीं हुआ है, कभी सर्वासुद्धि में देव नहीं हुआ है, तो ये सूक्ष्म कथन है। हम पकड़ करके बैठ जाए कि पंचमी परावर्तन में पूरे पूरे जितने भी भव है वो मिल गए हैं, कोई बाकी अनंत मार मिल गया, अरे दूसरा वो होता ही नहीं, उसको अनंत मार कहां से मिलेगा। तो कोई कथन तो स्थूल रूप से होता है, कोई कथन सूक्ष्म रूप से होता है। अब सूक्ष्म कथन जब आता है तब हम अनुवाद काम लगा दिए हमारे स्थूल कथन के, पर लगे कि परस्पर विरुद्ध बात है, वो ऐसी बात नहीं है। जो केवलीगम्य बात है वो सही है, उसमें उपयोग एक काल में एक ही गेय को जानता है, ये स्थूल कथन को वहां में लेना चाहिए जब समाधान होगा। ये बात है प्रयोजन है, प्रयोजन विशेष है, प्रयोजन इसलिए प्रयोजन क्या, तो उसका पूरा समाधान तो केवल ही दे सकता है, कोई सदमस्त नहीं दे पाएगा। ये तो मोटी मोटी बात है कि स्थूल कथन है सूक्ष्म कथन।
अगला प्रश्न है, पाप को बुरा है, पुण्य भी संसार है, बंधन है, जाता नहीं फिर क्या करना। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो दृष्टांत पूर्वक समझाए।
तो मूल की बात तो वो है कि करना कर्तृत्व रूप से करना तो एक भी पर्याय का नहीं है। पुण्य पाप की तो बात छोड़ो, सम्यक दर्शन की भी आप भी उसमें नहीं है, शुद्ध पर्याय शुद्धोपयोग की बात भी उसमें नहीं आती। इसलिए कर्तृत्व भाव से करने का तो मूल में से हमारा अभिप्राय छूट जाना चाहिए। अब बात हुई संस्था की, जब हमें कर्तृत्व से कोई कार्य नहीं करना चाहिए ऐसी हमारी समझ सही समझ है, तो फिर सहज कैसे होता है वो हमें समझना है। तो सहज जो अवस्था होती है वो सहजता का ज्ञान कब आता है कि सहज स्वभाव के अवलंबन में आएंगे तो सभी पर्याय की सहजता का ज्ञान आता है और उसमें कोई पर्याय का कर्तृत्व नहीं रहता है। फिर भी जो कर्तव्य है वो भी आ जाता है, इस वक्त सहज स्वभाव का अवलंबन है वही कर्तव्य है, वही तो किया गया, अब क्या करना बाकी रहा है, बात तो खत्म हो जाती है। इसलिए हमारी जो विचारधारा है उसमें ये करना वो करना करो 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 वाला जो प्रकार है वो प्रकार सही नहीं है। हमें इस प्रकार को छोड़ करके जिस ढंग से जिस कार्य पद्धति से काम होता है उस कार्य पद्धति में प्रवेश करना चाहिए। छूट सकती है, नहीं छूटती है वो अलग बात है, किंतु छूट सकती है, छोड़ सकते हैं।
कृपया मोक्ष का आवाज और खुलासा करें। द्रव्य स्वभाव तथा पर्याय का अर्थ में किस प्रकार समझे?
मोक्ष का भावार्थ वो है कि मुक्त भाव में परिणमन होना। मुक्त भाव में मैंने कहीं भी हमारे परिणाम आत्मा को छोड़कर प्रतिबंधक होता है, प्रतिबंध युक्त होता है, इससे विरुद्ध कहीं भी हमारे परिणाम अप्रतिबद्ध रूप से हमारी आत्मा में ही रहा करे, उसी का उसको कहते हैं मोक्ष का आभास। फिर ये परिपूर्ण होता है तो उसको मोक्ष कहते हैं, ये अपूर्ण होता है तो उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। लेकिन आंशिक मोक्ष है वो मोक्ष मार्ग है, और परिपूर्ण मुक्त भाव है वो मोक्ष है। उसमें आत्मा के सभी गुण परिपूर्ण शुद्ध रूप से परिणमन करते हैं, एक भी गुण उसमें अशुद्ध नहीं रहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसको निर्वाण कहते हैं। और भी इसमें कोई प्रश्न का विशेष रूप से चाहिए उत्तर तो पूछ सकते हैं। द्रव्य स्वभाव तथा पर्याय के अर्थ में किस प्रकार समझे? द्रव्य स्वभाव में तो बंध मोक्ष का सवाल पैदा ही नहीं होता है। द्रव्य स्वभाव तो जैसा है वैसा है, न उसको द्रव्य के साथ संबंध कुछ लेना बंध के साथ लेना देना है, न मोक्ष के साथ भी लेना देना है। ये जो पर्याय है उसकी तो चर्चा चली, ये जो अप्रतिबंध
समय साहब ने गाथा 13 में कहा है, ठीक। और वहां मोक्ष से रहित कहा है और समय साहब की आर्थिक गाथा में कहा है। शुद्ध का विवरण करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि नव तत्व से भिन्न है, तो इसमें मोक्ष तत्व से भी भिन्न है ऐसा कहा। जबकि कृष्ण काल में स्पष्टीकरण में मांगा है कि बात परस्पर विरुद्ध है, इसे पहले बुझा कैसे बात को दोनों परस्पर विरुद्ध हुई। एक नव तत्व आत्मा है, नव तत्व मोक्ष में भी है, और फिर आपको कथा में कहा कि मोक्ष में भी है, मोक्ष भिन्न है, नव भिन्न है, तो नवों में है और नवों से भिन्न है। ये तो दो लाख परस्पर विरुद्ध भी आते हैं। हम प्रश्न को कोई दूसरा ही लिखा है पीछे लिख सकते हैं, देता हूं कि आत्मा की प्रति मोक्ष के मोक्ष से कैसे होगी। इस प्रश्न के साथ सभी बातों का तो कोई अनुसंधान नहीं बैठता है, इसके लिए फिर स्वतंत्र प्रश्न को हम यहां चर्चा में लेंगे, ठीक है। जो अपना आत्म कल्याण के क्षेत्र में आना चाहता है तो क्या आना चाहता है, ये सवाल है। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, दुनिया में विविधता का कोई पार नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया छोड़ करके धर्म के क्षेत्र में जीव क्यों आता है? जो इस विषय को बिना सोचे इसमें प्रवेश कर लेता है तो ये रूढ़िगत जो भी धार्मिक प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, बाह्य क्रिया में उलझता रहता है और वैसे ही आयु पूर्ण कर लेता है। उसको पता ही नहीं है कि मैं क्यों इधर आया, या तो ऊपर ऊपर से ऐसा सोच लेता है कि धर्म करेंगे तो सुखी होंगे। क्यों? कि उतना तो मोटी मुट्ठी में भी जीवन में आता है, संसार में पाप तो बहुत होता है, इसलिए थोड़ा धर्म भी कर लेना चाहिए। तो उतने विचार मात्र से कोई आता है तो वैसे ही अपना आयु को व्यतीत कर लेता है। जबकि गुरुदेव ने कही एक गंभीर बात कही है, उतना ही नहीं अपने अनुभव से बात कही है। जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने ऐसी शुरुआत की है कि मुझे पूर्ण पवित्रता चाहिए, पूर्ण निर्दोषता चाहिए और किसी से पूरा सुख मिल सकता है, इसके सिवा संपूर्ण सुख और सर्वकाल के लिए सुख मिलना संभव नहीं है। तो ये सर्वोत्कृष्ट पद है जो निर्वाण पद है, उसकी माँ प्रारंभ में नियम में उसके लिए निर्धार करता है जी। तो उसी के अनुपात में उसका जो प्रयास है वो तो अपना ध्येय को हासिल करने के लिए चालू होता है। इसको विशेष रूप से खोल सकते हैं अपन कि मोक्ष क्या है, नव तत्व क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, विकार क्या है, विकार क्या है, स्वभाव विभाव क्या है, सब जानते हुए मनुष्यों को अपना आत्मकल्याण के लिए जो बल आना चाहिए, जिससे उसको अनुभूति तक पहुंच सके, ऐसा बल आना चाहिए, क्यों नहीं आता है? यही कारण है उसने शुरुआत ठीक ढंग से नहीं की है। यही कारण है इसका। बहुत प्रैक्टिकल बात वो है कि जिसको जितना चाहिए उसके अनुपात में ही पुरुषार्थ वो करेगा। संसार में भी जिसको शाम को 50 रुपये का खर्च है वो तो इतनी मेहनत करता है, और तो जिसको शाम को 10,000 की जरूरत है तो उतनी मेहनत करेगा, उतना पुरुषार्थ करेगा। तो हम आपको ये पूछ सकते हैं कि आपको पूरा सुख चाहिए या अधूरा चाहिए? आपको हमेशा के लिए सुख चाहिए, हमेशा हमेशा सुखी रहना चाहते हो, या कुछ दिनों तक बिना सोचे आप कहेंगे कि पूरा सुख पूरे पल के लिए नहीं चाहिए? तो शुद्धि चाहिए, और इसी का दूसरा नाम मोक्ष है। पूर्ण शुद्धि और पूर्ण पवित्रता उसका ही, और पूर्ण सुख इसका ही दूसरा नाम मोक्ष है। वास्तव में वो चाहिए तो उसी के अनुपात में ही हमारा प्रसाद चालू हो सकता है। अगर उतना व्यवस्थित रूप से हमने प्रवेश नहीं किया इस मार्ग में, इस लाइन में, तो हमारी जो स्थिति है जो वर्तमान में कि हम सबको जानते हुए भी हमारा पुरुषार्थ चलता नहीं, हमारा पुरुषार्थ उठता नहीं, और जो भी वर्तमान परिणाम है वो साधन है, लेकिन बिना साध्य साधन किसका आपने साध्य निश्चित नहीं किया तो मोक्ष का निश्चय चलाने के लिए तो मैं अधिकार चलाया है कि मोक्ष का निश्चय कैसे करता है। बहुत पहले दिया है पंडित जी ने और हर पहलू को बहुत विस्तार से उसकी चर्चा की है, लेकिन ऐसा निश्चय होता है तो निश्चय के अनुसार अनुसार ही कार्य का उठाव आता है। दूसरा दृष्टांत करें कि हमको शाम तक 20 किलोमीटर चल के पहुंचना है तो हमको पता है कि अगर शाम तक पहले नहीं पहुंचेंगे तो रास्ते में हम खत्म हो जाएंगे, रास्ता अच्छा नहीं है, रात को या तो डूब जाते हैं या तो प्राणी खा जाते हैं जंगल के। तो उतने हमारे जो कदम है उस तो तेजी से उठाने के लिए हमें विकल्प नहीं करना पड़ता है। क्या हमें मालूम है कि बहुत लंबा रास्ता हमको शाम तक पूरा करना है। वैसे जिसको पूर्णता का लक्ष्य होता है उसको अपनी वर्तमान स्थिति का भान होता है कि मुझे बहुत लंबा रास्ता काटना है, बहुत बाकी है, मुझे बहुत करना बाकी है, बहुत करना बाकी है, तो उसके परिणाम में जो तेजी आनी चाहिए वो तेजी आ जाती है। तो आत्मा की प्राप्ति मैंने अनुभव प्रश्नों में कि आत्मा की प्राप्ति मोक्ष के रूप से कैसे होती है, प्राप्ति मैंने अनुभव तो मोक्ष तो पूर्ण अनुभूति है, जिसको पूर्ण अनुभूति के लिए उत्साह आया निर्योगास हुआ उसको क्या आत्म प्राप्ति मैंने शुरुआत के अनुभव अनुभूति नहीं हो सकती क्या? तो आत्म प्राप्ति की भावना इतनी तीव्र जोर से आती है, इतनी तीव्र जोर से आती है कि उसको हर कार्य में मेरा आत्म कल्याण कैसे हो उन्हीं दृष्टिकोण से वो हर कार्य को देखेगा, उसी लक्ष्य से वो देखेगा और वैसे ही अपनी सब व्यवस्था बिठाएगा। तो जहां हमारे ध्येय को विरुद्ध हम नहीं चले ऐसी व्यवस्था सही परिणाम की होगी और ऐसी व्यवस्था अपने विधि के विषय में उसके परिणामों की चलेगी। तो एक दफे तो इस ध्येय को निश्चित कर लें तो ये सब बातें छोटे समझ में आ जाती हैं। दूसरा प्रश्न
इन्हीं का आगन कुमार जी का एक दूसरा प्रश्न है, आज आपने प्रातः के प्रवचन में सम्यक दर्शन ज्ञान दायित्व को साधन कहा और मुख्य को साध्य कहा था, यह साध्य साधन संबंध किस प्रकार का है?
ठीक है, जो संवेद दर्शन ज्ञान चारित्र है ये मोक्ष का मार्ग है, एक सूत्र जी का पहला सूत्र है। मार्ग कहो, उपाय कहो, इलाज कहो, साधन कहो, क्या अंतर पड़ता है? इसका फल क्या है? मोक्ष है। तो मोक्ष साध्य है और उसको उसका साधन मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है। एक मार्ग है, एक मार्ग फल है, एक साधक है, एक साध्य है। उसमें एक और तर्क हो तो हम समझ सकते हैं राम कुमार जी कि जो भी आपका क्या तर्क है उसमें साधन नहीं होने के बारे में आपको कौन सी शंका है, किस प्रकार की शंका है, श्रीमत से भी सारी बात है। अपना प्रश्न का कोई उत्तर में कोई और कैसा प्रश्न उठता है तो उठा सकते हैं, उसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्नकाल या दूसरा कोई भी उठा सकते हैं, फिर इसमें वही बात में रह जाती है समझ में, तो उसकी चर्चा भी हम कर लें। परिभाषा हमारे परमात्मा में प्रसिद्ध है, मथु स्वभावो धर्मो, क्या परिभाषा है, वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है, और जो वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु का जो स्वभाव है वो शक्ति रूप है, सामर्थ्य रूप है स्वभाव, उसी स्वभाव के अभिव्यक्ति उसमें शुद्ध परिगमन में होती है, किसी को भी धर्म कहने में आता है। जैसे आत्मा को आत्म शांति मिले वही आत्मा का धर्म है, क्योंकि तो भी उनका स्वभाव है प्रकृति है। ऐसे आत्मा में अनंत ज्ञान भरा हो वो भी उसका स्वभाव है, शुद्ध ज्ञान प्रवृत्त हो गए वो भी धर्म है। आत्मा में चारित्र शक्ति है, शुद्ध चारित्र प्रवृत्त हो वो भी धर्म है। तो ऐसे धर्म की तो अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन मूल जो सूत्र है वो अबाध्य है, कोई भी तर्क तर्क से उसमें कोई बाधा कर सकते नहीं है, इसलिए मूल सूत्र वो है। फिर इसके जो स्वभाव की अनेक प्रकार की जो दशाएं हैं, क्योंकि क्योंकि उसमें अनंत गुण है, स्वभाव है वो अनंत गुणात्मक है, और किसी भी एक गुण की अभिव्यक्ति से धर्म की परिभाषा शास्त्र में आती है। अनेक प्रकार से शास्त्र में धर्म की परिभाषा होने पर भी उसका सामान्य रूप वो है कि वो स्वभाव प्रवृत्त हुआ है, फिर किसी गुण के माध्यम से उसको बताया जाता है या बोला जाता है।
अगले प्रश्न है, एक व्यक्ति में दो प्रश्न है, पहला है परिभाषा
इसीलिए आपका कहना यह सही है कि धर्म एक सर्वमन रूप है, प्रयोग रूप है, लेकिन सर्वथा परिभाषा से रहित हो तो उसको कोई बता ही नहीं सकते थे, कोई कह सकते थे न कोई सुन सकते भी थे। तो जो अधर्मी है उसको धर्म की प्राप्ति तो बताए बिना कहे बिना बताई ही नहीं, इसलिए सर्वथा वो अवाच्य है ऐसा भी नहीं है, कथनचित वाच्य भी है और कथनचित अवाच्य भी है। ये कह सकते हैं हमको बहुभाग अवाच्य है, संकेत मात्र वाक्य है ऐसा कह सकते हैं क्या, कि धर्म में अनंत गुण का परिणमन है जबकि इसकी परिभाषा में कुछ एक गुण का परिणमन की बात आती है। जैसे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारी प्राण क्या है कि धर्म है, मोक्ष मार्ग है वो धर्म है, तो उतना तो कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक ज्ञान धर्म है, सम्यक चारित्र धर्म है, सूत्र है मुकुंदाचार्य का, तो सर्वथा वचन अगोचर है ऐसा भी नहीं है और सर्वथा वचन गोचर है ऐसा भी नहीं है, इस तरह से उसको वैसा है वैसा समझना चाहिए। कथनचित कहने से वो परिधि से मुक्त हो जाता है, जबकि वे कथनचित अभिव्यक्त होता है तो उसमें परिधि नहीं रही। ठीक है, आपके शंका का समाधान होता है। कथनचित कहने से हमारी मर्यादा हमने पूरी वहां नहीं की, बहुत बाकी है जो हम साथ ही कहते हैं तो वो परिधि में नहीं आता है। शब्द का अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न प्रकरण में भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। एक तो स्थूल रूप से हम जो विचार करते हैं उसको भी विकल्प कहते हैं, तो उसमें राग और ज्ञान के मिश्र पर्याय है हमारे विचार में, उसको हम विकल्प भी कहते हैं, विकल्प के संज्ञा रूप को कहते हैं। और ज्ञेयों में अनेक प्रकार के या ज्ञान में ज्ञेयों का अनेक प्रकार का जो भेद होता है उसको भी विकल्प कहने में आता है। कह सकते हैं, कहने में आपत्ति नहीं है, फिर भी हमारा जो ये विकल्प विचार विकल्प और ये विकल्प एक नहीं है, वो अलग अलग बात है, उतनी सी बात है।
दूसरा विकल्प आपने फरमाया तो वो क्या केवल ज्ञान में भी होता है,
उस ज्ञान को विकल्पात्मक ही कहने में आता है, जो निरपरक ज्ञान है उसको विकल्पात्मक ज्ञान कहा है, ऐसा कहने का स्थापित पद्धति है कि जिनका जितना ज्ञान है उसको विकल्पा ज्ञान कहने में आता है, उसको साकार ज्ञान भी कहने में आता है, ऐसे कहने की पद्धति है शास्त्र में। लेकिन जो है तो वस्तु का स्वरूप तो जो है तो समझना है, क्योंकि विकल्प के अर्थकथन अलग अलग भी है।
विज्ञान
ने कहा पंचाध्याय में ऐसे ज्ञान को विकल्प कहा है, इसलिए वो शास्त्र वचन है। तो उसका अर्थ में वो विकल्प नहीं लेना है, विकल्प के बहुत अर्थ किए हैं। दूसरा प्रश्न है, श्रेणी में अद्वितीय रूप व्यक्ति परिवर्तन होता है तो व्यक्ति परिवर्तन का वहां अर्थ वो है कि एक देह से दूसरे देह में ज्ञान का परिवर्तन होना है, जबकि विषय अद्वितीय रूप का है तो हम उसको अद्वितीय रूप कैसे ज्ञान में लेंगे ये बताइए आप। व्यक्ति केवल ज्ञान का विषय है तो उसकी कल्पना हमें कोई करनी है क्या?
सिद्धांत पूछना चाहते हैं ना, सिद्धांत में विभिन्न दो प्रकार का हो गया, उत्पन्न एक वैसे जान रहा है और एक ऐसा जो पढ़ने ही जानने में लग रहा है, एक हिसाब जो काम श्रेणी की अवस्था में संभव है, ये व्यक्ति का प्रश्न लगता है।
ऐसा है कि ज्ञान में स्वतः प्रकाशक पना होता है तो ये हो जाता है क्या? अब मेरा प्रश्न है, जब आप इसी तरह सोचते हो तो स्वतः प्रकाशक पना में क्या दुरुपयोग हो जाता है क्या?
समस्या भी रहेगा या करना रहेगा
तो समस्या का अर्थ स्वतः प्रकाशक नहीं है क्या?
सब एक साथ है कि वो सैकड़ों जाने कभी बल्कि जाने
विक्रम से जानता है क्या, एक साथ जानता है
दोनों योजनाएं वास्तव में आती है, मेरे पास दीजिए
जरूरी आती है। तो ऐसे स्थूल रूप से ज्ञान को नहीं समझना चाहिए, ज्ञान एक ऐसा पर्याय है जिसमें बहुत सूक्ष्मताएं भरी है, इतनी सूक्ष्मताएं भरी है कि इसको चरम सीमा की परिभाषा आई कि श्रेणी में व्यक्ति परिवर्तन भी होता है जबकि श्रेणी में शुद्ध प्रयोग भी होता है ना, क्योंकि व्यक्ति परिवर्तन है मानना तो पड़ेगा, प्रथम वितर्क विचार प्रत्यक्ष बात है तो बहुत सूक्ष्म परिणाम है। तो शास्त्र कथन में कहीं स्थूल कथन से विवेक्षा होती है, सूक्ष्म कथन से निरीक्षाबित होती है, जैसे कि हम कहेंगे कि हमारे जीव में सभी प्रकार के पांच परावर्तन में सभी भाव का ही है, कोई भाव हमने नहीं छोड़ा है अतः, लेकिन ये स्थूल कथन है। सम्यक दृष्टि को जो जो भाव मिलता है वो भाव नहीं मिला है किसी को, सूक्ष्म कथन हो गए इसका, कभी सौगर्ण इंद्र नहीं हुआ है, कभी लोकांतिक देव नहीं हुआ है, कभी सरदार सिद्धि में देव नहीं हुआ है, तीन सूक्ष्म कथन है। हम पकड़ करके बैठ जाए कि पांच पंच परावर्तन में पूरे पूरे जितने भी गौ है वो मिल गए हैं, कोई बाकी है उनका मिल गया, अरे दूसरा वो होता ही नहीं, उसको अनंत बार कहां से मिलेगा? तो कोई कथन तो स्थूल रूप से होता है, कोई कथन सूक्ष्म रूप से होता है। अब सूक्ष्म कथन जब आता है तो मानो हम ना पांग राज्य हमारे स्थूल कथन के और बड़ी जी परस्पर विरोधी बात है, ऐसी बात नहीं है। ये जो केवल गम्य बात है वो सही है, उसमें उपयोग एक काल में एक ही गेह को जानता है, ये स्थूल कथन को बाहर नहीं लेना चाहिए, तभी समाधान होगा। ये बात क्योंकि उसका पूरा समाधान तो केवल भी दे सकता है, कोई सदमत नहीं दे पाएगा। ये तो मोटी मोटी बात है कि स्थूल कथन है, सूक्ष्म कथन
है। है, पाप जो बुरा है उनमें भी संसार है, बंधन है। जाता नहीं क्या करना, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, दृष्टांत पूर्वक समझाए।
तो मूल की बात तो वो है कि करना, कर्तव्य रूप से करना तो एक भी पर्याय का नहीं है। तुम पाप की तो बात छोड़ो, समय दर्शन की बात भी उसमें नहीं है, शुद्ध पर्याय शुद्ध उपयोग की बात भी उसमें नहीं आती। इसलिए कर्तव्य भाव से करने का तो मूल में से हमारा अभिप्राय छूट जाना चाहिए। अब बात रही संस्था की, जब हमें कर्तव्य से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारी समझ सही समझ है, तो फिर सहज कैसे होता है, यही हमें समझना है। तो सहज जो अवस्था होती है उस सहजता का ज्ञान करना आता है कि सहज स्वभाव के अवलंबन में आएंगे तो सभी पर्याय की सहजता का ज्ञान आता है, और उसमें कोई पर्याय का कर्तृत्व नहीं रहता है। फिर भी जो कर्तव्य है वो किया जाता है, इस वक्त सहज स्वभाव का अवलंबन है, वही कर्तव्य हमारे तो किया गया, अब क्या करना बाकी रहा है, बात तो खत्म हो जाती है। इसलिए हमारी जो विचारधारा है उसमें ये करना वो करना वाला जो प्रकार है वो प्रकार सही नहीं है। हमें इस प्रकार को छोड़ करके जिस ढंग से जिस कार्य पद्धति से काम होता है उस कार्य पद्धति में प्रवेश करना चाहिए। छूट सकती है, नहीं छूटती है अलग बात है, किंतु छूट सकती है, छोड़ सकते हैं।
कृपया मनुष्य का भावार और खुलासा करें, द्रव्य स्वभाव तथा पर्याय का अर्थ में किस प्रकार समझे।
मनुष्य का भावार्थ हो गए कि मुक्त भाव में परिणमन होना, मुक्त भाव में मैंने कहीं भी हमारे परिणाम आत्मा को छोड़कर प्रतिबंधक होता है, प्रतिबंध युक्त होता है, इससे विरुद्ध कहीं भी हमारे परिणाम अप्रतिबद्ध रूप से हमारे आत्मा में ही रहा करे, उसी का उसको कहते हैं मोक्ष का भावार्थ। फिर ये परिपूर्ण होता है तो उसको मोक्ष कहते हैं, ये अपूर्ण होता है तो उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। लेकिन आंशिक मोक्ष है वो मोक्ष मार्ग है, और परिपूर्ण मुक्त भाव है वो मोक्ष है। उसमें आत्मा के सभी गुण परिपूर्ण शुद्ध रूप से परिणमन करते हैं, एक भी गुण उसमें अशुद्ध नहीं रहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं।